ஆயரியாணம் நமோ ஆயரியாணம் நமோ வஜாயாணம் நமோ லோயே சவசாஹூணம் சித்தமனந்தமணிந்தியம் மணுவமம பத்த சோகமணவஜம் கேவலபஹோஹனிஜிய துண்ணயதிமிரம் ஜிணம் நமஹ. ஸ்ரீ வீர்சேன் ஆச்சாரிய ரச்சித் ஏ தௌலா டீகா ஹை ஜோ மூல கிரந்த ஹை ஷட்கண்டாகம் உஸ்கே ரச்சயிதா பூதபலி ஔர் புஷ்பதந்த ஔர் உஸ்கே ஜோ உபதேஷ் देने वाले आचार्य धरसेन आचार्य. तो हम यहाँ पेज नंबर 17 पर आ गए हैं. हमने देख हाँ कौन से वाक्य 14 पेज नंबर हाँ देखिए आपका प्रश्न ऐसा है कि पेज नंबर 14 पर विशेषार्थ में जो लिखा है कि अगुरु लघु गुण के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद माने गए हैं उसका अर्थ क्या है. तो ऐसा है द्रव्य में जो शक्तियां हैं गुण हैं वो हर समय उसकी पर्याय होती रहती है. तो गुण में तो कैपेसिटी परिपूर्ण होती है अनंत शक्ति है. प्रत्येक गुण में शक्ति तो अनंत है. जैसे हमारे ज्ञान गुण की शक्ति तो अनंत है कैपेसिटी है उसमें. परंतु अभी पर्याय में कितना है तो हमारा क्षोभ ज्ञान हीन रूप परिणमित हो रहा है. तो पर्याय में ज्ञान के कितने अंश अभी उघाड़ रूप है तो कम है. तो कम है फिर भी उसको मिनिमम ज्ञान जो है पर्याय नाम का जो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव को होता है वो तो सबसे कम से कम ज्ञान उसको है. फिर भी उसके अविभाग प्रतिच्छेदों में अगर हम उसको नापेंगे वो शक्ति का यूनिट है एकक है शक्ति मापने का वो माप है. तो उसमें अगर हम मापेंगे तो निगोद वाले जीव में भी पर्याय की बात चल रही है. पर्याय में जो ज्ञान प्रकट है उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं. किसी अन्य जीव के थोड़े ज्यादा है किसी के और थोड़े ज्यादा है और थोड़े ज्यादा है वो कितने कितने ज्यादा है या किसके अपेक्षा से किसके हीन है तो कितना हीन है कितना ज्यादा है उसको करने के लिए क्या उसमें ये दो षडगुणी हानि वृद्धि वगैरह वो बताए. वो तो अभी हम विषय की आपका वो क्वेश्चन नहीं है. तो ये उसमें कम या ज्यादा होने की जो शक्ति है द्रव्य की उस शक्ति को कहते हैं अगुरु लघु गुण. तो अगुरु लघु गुण में भी उसके अपने अविभाग प्रतिच्छेद है. अगुरु लघु गुण है हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं. तो उसमें निमित्त है वो अगुरु लघु गुण. जैसे द्रव्य का नाश नहीं होता हमेशा बना रहता है. क्यों कौन से गुण के कारण अस्तित्व गुण के कारण. तो ज्ञान गुण की भी अस्थि है कि नहीं है क्यों है वो है तो अपने से परंतु द्रव्य के ही अंदर अंदर हम निमित्त नैमित्तिक संबंध लगावे तो एक गुण के लिए दूसरा वह निमित्त रूप है ऐसा भी कहते हैं. या ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है प्रत्येक गुण में अन्य अनंत गुणों का रूप होता है यानी ज्ञान गुण की भी अस्थि है. वस्तुत्व गुण का क्या कार्य है कि वो शक्ति अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करे. तो ज्ञान गुण अपना अपना जानने का कार्य कर रहा है. द्रव्यत्व गुण बताता है कि यह परिणमन निरंतर होता है तो ये ज्ञान का जानने का कार्य भी निरंतर हो रहा है ना. तो ये द्रव्य की शक्ति बताने के लिए उसके अलग अलग नाम लिखे. तो ये अविभाग प्रतिच्छेद हमने अगुरु लघु गुण के नापे. तो अगुरु लघु गुण में भी जो हीन अधिकता होती रहती है तो उसके निमित्त से अन्य सभी गुणों के अपने अपने परिणमन में हीन अधिकता होती है वो उसके अपने अपने कारण. परंतु यहाँ मुख्य गुण कौन सा है उस शक्ति वाला गुण कौन सा है ये अगुरु लघु गुण. द्रव्य को ना गुरु यानी बड़ा होने देता है और लघु यानी अत्यंत छोटा होने देता है. तो क्या होता है तो जो कुछ उसकी विशिष्ट रेंज है उसके रेंज में ही उसका परिणमन होगा उसके बाहर नहीं. तो ये जो अगुरु लघु गुण है उसके भी पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। अनादि से प्रत्येक जीव में, वो भले मिथ्यात्व हो या एकेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, किसी की भी, सिद्धों में भी अगुण लघु गुण है और वहां भी उसका ये जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, यानी ये जो पर्याय में हीनादिकता होती रहती है, वही उसको ही उत्पाद और व्यय कहा, स्वनिमित्तक उत्पाद व्यय, ख्याल है ना। द्रव्य की अपनी ही योग्यता से उसमें कम ज्यादा कुछ बढ़ोतरी या हीनता होती रहती है। पर्याय की शक्ति की बात यहाँ है।
देखो, यहाँ जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो पर्याय की कितनी शक्ति है, योग्यता है, वो बताने वाला जो कोई यूनिट है उसको अगुरु लघु अविभाग प्रतिच्छेद कहा गया है। अभी यह जो अविभाग प्रतिच्छेद जो है वो अगुरु लघुत्व गुण के कारण उसमें षटस्थान अपतित हानि और वृद्धि होती है। तो हम तो ऐसा समझते हैं कि अभी एकेंद्रिय पर्याय का ज्ञान और पंचेंद्रिय पर्याय का ज्ञान, केवल ज्ञानी का ज्ञान, इसमें हम स्थूल रूप से देखते हैं हीन अधिकता। लेकिन हर समय हर पर्याय में, ना केवल जीव द्रव्य में, विश्व के सारे द्रव्यों में, क्योंकि अगुरु लघुत्व नाम का ये सामान्य गुण है, ख्याल में आया, तो इसके कारण उसमें हीन अधिकता पर्याय में, केवल ज्ञान के पर्याय में भी ये होता है। और वो केवली गम्य विषय है इतना समझकर बाकी भूल जाना, क्योंकि शास्त्र में तो ऐसा ही कथन आता है, ये जो अगुरु लघुत्व की जो हीनाधिकता होती है वह तो केवली गम्य है।
स्वनिमित्त ने द्रव्य के अंदर उसका निमित्त है ना, पर निमित्त ने जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा तो बना द्रव्य की अपनी योग्यता से, परंतु वहाँ अन्य वस्तु, अन्य द्रव्य वहाँ निमित्त रूप से उपस्थित है, बस इतना बताने के लिए पर निमित्तक कहा। उत्पाद व्यय जो ध्रुवता है वो द्रव्य की अपनी शक्ति है, वो उसके अपने से होती है, परंतु जब उत्पाद होता है तो सामने कोई विशिष्ट वहाँ निमित्त हाजिर रहता है, वो कुछ कार्य में तो कुछ नहीं करता है, उसकी उपस्थिति होती है, तो वो अन्य की उपस्थिति बताने के लिए पर निमित्तक उत्पाद व्यय कहा। हाँ, देखो ये क्या है, आपका प्रश्न ऐसा है, ये कौन सा उसी प्रेष की बात चले ना। पर निमित्त उत्पाद वे उन्होंने समझाया, हाँ आपका ऐसा प्रश्न है, अवगाहन गति आदि में निरंतर भेद दिखाई देता है, इसलिए अवगाहन गति आदि के कारण भी भिन्न होने चाहिए। क्या कहते हैं, आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्य है, उनके प्रदेशों का हलन चलन नहीं होता है, एक स्थान से अन्य स्थान में जाना या एक स्थान में बैठे हुए प्रदेश ऊपर से नीचे चले जाना, ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ उनके प्रदेश है वहीं पर स्थिर है, उसको कहते हैं निष्क्रिय द्रव्य है। तो निष्क्रिय द्रव्य है तो उसमें पर निमित्त उत्पाद व्यय होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न पूछा है, तो उसमें कैसे घटित करना, तो आकाश ने अवगाहन दिया, किसको दिया, जीव को दिया, तो कोई जीव तो स्थिर बैठे है, सिद्ध भगवान तो स्थिर है वहां पर, उनको भी अवगाहन दिया, और हम चल रहे तो हमको भी अवगाहन दिया, तो इस निमित्त किसको निमित्त हुआ, उसकी अपेक्षा से वो आकाश में भी भेद डाले कि सिद्धों को अवगाहना देने वाला आकाश किसको अवगाहना दे, या तो स्थिर जीव को, और गमन करते हुए जीव को अवगाहना दिया वो आकाश, इसमें हमने भेद डाला। आकाश ने क्या किया, अवगाहन दिया, ये उसका उत्पाद हुआ, परंतु ये जो उसका उत्पाद है वो किसके निमित्त से हुआ है, ख्याल है ना, किसको अवगाहन दिया उसने, इस तरह से उसमें भेद डाले। जैसे लोकाकाश और अलोकाकाश, ये भेद हम क्यों करते हैं कि जहाँ अन्य पांचों ही द्रव्यों को अवगाहना दी है उसी को तो हम लोकाकाश कहा, और जहाँ अन्य कोई द्रव्य है ही नहीं वहाँ तो उसको अलोकाकाश कहा, उसमें अवगाहन की शक्ति तो परिपूर्ण है, अनंत शक्ति है, परंतु सभी वो लोकाकाश में अनंत विभाग में ही, आकाश का अनंत वा भाग लोकाकाश है, लोकाकाश के बाहर उसके अनंत गुणा ऐसा अलोकाकाश है, यानी आकाश ने अपने अनंत वे भाग में अन्य सभी द्रव्यों को अवगाहना दे दी, तो उसके आकाश के उतने हिस्से को हमने लोकाकाश नाम दिया, तो तो हमने उस निमित्त की अपेक्षा उसमें भेद डाले कि नहीं डाले? तो ऐसे लोकाकाश के भी अंदर उसने स्थिर द्रव्यों को भी अवगाहना दी, उसने चलने वाले द्रव्यों को भी अवगाहना दी, तो उस तरह से उसमें भी हम भेद डाल सकते हैं। इतना बताने के लिए आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्यों में भी अवगाहना गति, गति क्यों, वो धर्म द्रव्य में गति आदि के निमित्त से भेद डालेंगे, और अधर्म द्रव्य में भी वो स्थिति की अपेक्षा से भेद डालेंगे। काल में भी किसको निमित्त हुआ परिणमन में, वहां के काल द्रव्य, ऐसे उसमें भी भेद डाल सकते हैं। ख्याल है? अब हम आए थे 17 नंबर पेज पर। हमने क्या देखा है कि सबसे पहले ग्रंथकार रचना करते हैं तो 6 बातें बताते हैं। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण यानी प्रमाण कितना है, ग्रंथ का नाम और कर्ता, और ये 6 बातों का ही 6-6 अपेक्षाओं से वर्णन करते हैं। पहले तो किस धातु से वो शब्द बना उसको बताते हैं, तो धातु बताने के बाद हाँ उसका निक्षेप, निक्षेप तो वस्तु में होते हैं, वस्तु के जो अलग अलग एंगल्स है, जो अलग अलग उसमें हम उसका नाम रखा या उसमें हमने किसी अन्य चीज़ की कल्पना की, इसको निक्षेप कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई कागज है और उसमें कलर लगाए हैं अलग अलग, तो वो खाली हम उसको कागज और कलर रूप से नहीं देख रहे, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पिताजी की फोटो लगी है ना। फोटो क्या है? कागज पर कुछ कलर्स का प्रिंटिंग है जो कैसे दिख रहे हैं, हमारे पिताजी जैसे। तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पिताजी हैं। कोई आपके घर में आते हैं, हमारे घर में कोई आए तो हम क्या बताएंगे, ये हमारे पिताजी है, ये हमारी माताजी है। क्या वो कागज हमारे माता पिता है? तो ये तो लौकिक व्यवहार में हम निक्षेप और नयों का उपयोग तो हर समय कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं, दिन में तो 24 घंटे हमारे उसमें नयों में और निक्षेपों में अपना व्यवहार चलता है, लौकिक व्यवहार। कागज को हम पिताजी कह रहे हैं, कागज को हम माताजी कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कागज के ऊपर जो फिगर, जो कुछ चित्र आया है, वो हमारे पिताजी के समान दिख रहा है, तो हमने वो कागज में निक्षेप किया, क्या, पिताजी का। ख्याल है ना? अब उसको हम जान रहे पिताजी के रूप में, तो ये हमारा नए हो गया है। ये नए निक्षेप कुछ नहीं, हम तो डेली रूटीन लाइफ में तो बहुत उसके यूटिलाइजेशन करते हैं, और अभी उसको ही हम नाम दे के इसे सीखेंगे, ये निक्षेप है, नए है, तो हमको ऐसा लगता है हमें कुछ बहुत भारी चीज़ सीख रहे हैं। याद है? तो हम ये जो मंगल आदि जो 6 बातें हैं उसका 6-6 अपेक्षाओं से वर्णन करेंगे। पहले धातु बताएंगे, फिर निक्षेपों का वर्णन करेंगे। निक्षेप हमने देखे थे, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप और भाव निक्षेप, ये 6 निक्षेप है। फिर नयों के द्वारा उसका निरूपण करेंगे। तो नए हमने 7 देखे थे, उसमें मुख्य नए 2, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। अखंड ऐसे द्रव्य को विषय बनाने वाला, जिसको सामान्य कहते हैं, सामान्य को विषय बनाने वाला, उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक नए। और विशेष यानी पर्यायों को, पर्याय ने कोई भी भेद, पर्याय ने अकेले वो 1, 2, 3 समय वाली पर्याय ऐसा नहीं लेना, किसी भी भेद को, भले वो प्रदेशों में भेद डाले यानी क्षेत्र में भेद करे या काल में भेद करे या गुणों में भेद करे, भाव से भेद करे, कोई भी अपेक्षा भेद हो, तो भेद को जो दृष्टि में लेता है यानी द्रव्य को उस भेद रूप से जो देखता है, तो उसको कहेंगे पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय के हमने 3 भेद देखे थे, नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। नैगम नय की हमने यहाँ चर्चा नहीं की, वो भविष्य में आने वाली है, तो वहाँ भी भूत या भावी पर्याय युक्त पूरा द्रव्य हम कंसिडर करते हैं। जैसे पहले श्रेणिक राजा था, अभी वो नरक में है, फिर भी हम उसको पूर्व काल की अपेक्षा श्रेणिक राजा अभी नरक में ऐसा ही कहते हैं। तो नरकों में कोई राजा नहीं रहते, ख्याल है ना, और उनका नाम भी वहाँ श्रेणिक नहीं है, फिर भी हम उसको पूरा द्रव्य कंसिडर करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, ये श्रेणिक राजा है। हम कहते हैं महावीर तीर्थंकर है, क्या वो अभी तीर्थंकर है कि अभी वो सिद्ध बन चुके हैं? तो उनको अरिहंत अवस्था से हम उनको डिनोट करते हैं, उनको याद करते हैं, तो इसको कहते हैं द्रव्य निक्षेप। और क्षेत्र निक्षेप आदि की बात करेंगे, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप में क्या फर्क है? तो भाव निक्षेप यानी वो वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य वहां लेगा, वो भाव निक्षेप है। उसकी जब चर्चा आगे डिटेल में आएगी तो उसके हम चर्चा वहां पर करेंगे। संग्रह ने हमको, संग्रह ने क्या करता है? तो संग्रह ने सबको इकट्ठा करता है। व्यवहार ने क्या करता है? वो भिन्न भिन्न द्रव्यों में भेद डालते चला जाता है, उसको व्यवहार ने कहते हैं। ये द्रव्यार्थिक ने के हमने तीन भेद देखे। पर्यायार्थिक ने, उसको रुजु सूत्र ने कहा। रुजु यानी सीधा, हमने देखा था जो वर्तमान पर्याय वाला जो है, वहां पर्याय की मुख्यता, यहाँ द्रव्य को ही जान रहा है पर हम पर्याय की मुख्यता से जान रहा है, इसलिए उसको पर्यायार्थिक ने कहते हैं। तो रुजु सूत्र ने वर्तमान पर्याय से युक्त वाले द्रव्य की सभी बातें करेंगे, तो उसमें जो कुछ वर्तमान पर्याय में आ जाएगा वो सबको वो कंसीडर करेगा, उसको मान्य करेगा। उसके आगे आगे वाले जो नए हैं वो कहते नहीं, आप कोई भी शब्द यूज करते हैं तो वो शब्द बराबर व्याकरण की दृष्टि से सही होना चाहिए। पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसक लिंगी, ऐसे सब अलग अलग लिंग वाले एक साथ आप वाक्य नहीं लिख सकते या उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। वहाँ कोई लिंग में कोई व्यभिचार उसको कहते हैं, यानी कोई दोष, दोष यानी कैसे, जैसे स्त्री है और फिर एक उसके लिए शब्द आता है कलत्र, तो कलत्र शब्द नपुंसक लिंगी है, स्त्री शब्द स्त्रीलिंगी है, ऐसे दो अलग अलग लिंग वाले शब्द एक साथ नहीं कह सकते। तो ये पुल्लिंग, तो ये उसने उसमें लिमिटेशंस डाली। रुजु सूत्र नए ने जिसको स्वीकार किया उन सभी शब्दों को शब्द ने स्वीकार नहीं करता, व्याकरण की दृष्टि से सही है उसको स्वीकार करेगा। तो शब्द ने तो एकार्थवाची बहुत सारे शब्दों को स्वीकार कर भी लिया। अगला वाला जो नए है ना समभिरूढ़, वो कहता है एकार्थवाची सभी शब्द नहीं चलेंगे, एक ही शब्द एक वो चलेगा उसका, जो उसको डिनोट करने वाला है। जैसे हमने शक्र पुरंदर वगैरह देखा था तो उसमें से वही चलेगा, यानी पुर का नाश करने, पुर को रचना करने वाला उसको हम पुरंदर कहेंगे। आगे वाला जो नए है कौन सा, एवं भूत, वो कहेगा वो अभी रचना कर रहा है क्या नगर की, यदि अभी नगर कर रचना करता है तो हम उसको पुरंदर स्वीकार करेंगे, अभी वो कार्य नहीं कर रहा तो हम उसका वो नाम भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे अगले अगले नए जो है वो रुजु सूत्र नए के ही थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म भेद है आगे के। ये हमने नयों की चर्चा की। अब हमारा कल से विषय शुरू हुआ था एंड में कि कौन से नए कौन से निक्षेपों को जान सकता है, कौन से नए में कौन से निक्षेप हो सकते हैं। तो उसमें हमने 17 पेज पर आए हम, उसके ये 15 और 16 पेज में हमने देखा था कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव यानी सभी जो निक्षेप है द्रव्यार्थिक नए में सभी निक्षेप आ जाते हैं, और उस पर वो प्रश्नोत्तरी भी हुई थी, वहाँ पोह भी हुआ था कि भाव निक्षेप किस तरह से होता है, उसकी भी हमने चर्चा की थी। अब रुजु सूत्र नए में कौन कौन से निक्षेप पॉसिबल है उसकी चर्चा चल रही थी एंड में कल। तो 16 पेज के अंतिम लाइन में वहाँ लिखा है, अंतिम पैराग्राफ में, रुजु सूत्र नए में कौन कौन से निक्षेप एप्लीकेबल है, तो स्थापना निक्षेप को छोड़कर शेष सभी निक्षेप संभव है, ये कल बात आई थी। तो उसके बाद आगे प्रश्न पूछते हैं, 17 नंबर पर आए अभी हम, कल इसको पढ़ा था, अभी यहाँ से हम फिर जाएंगे कि रुजु सूत्र तो पर्यायार्थिक नए हैं, उसमें द्रव्य निक्षेप कैसे घटित हो सकता है, क्योंकि हमने रुजु सूत्र नए को क्या लिया था, वह वर्तमान पर्याय वाला, और द्रव्य निक्षेप में तो द्रव्य की बात है और यहाँ पर्याय की मुख्यता है। तो प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा कि रुजु सूत्र नए में द्रव्य निक्षेप कैसे घटित हो सकता है, तो उसका समाधान है कि ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि रुजु सूत्र नए में वर्तमान समयवर्ती पर्याय से अनंत गुणान्वित एक द्रव्य ही तो विषय रूप से संभव है, यानी रुजु सूत्र नए भी पर्याय है उसका विषय, परंतु अकेला पर्याय नहीं, पर्याय से युक्त पूरा द्रव्य ही वो जान रहा है, इसलिए वहां भी द्रव्य निक्षेप संभवता है। रुजु सूत्र नए के विषय में द्रव्य निक्षेप का संभव यानी उसका यूटिलाइजेशन है, उसी का फिर अर्थ करते हैं। पर्याय द्रव्य को छोड़कर स्वतंत्र नहीं रहती है, और रुजुसूत्र का विषय वर्तमान पर्याय विशिष्ट द्रव्य है, यानी वो अकेले पर्याय ने कैसे द्रव्य पूरा उस पर्याय रूप से दिख रहा है उसको। कल हमने देखा था मिथ्या दृष्टि जीव, तो हमने पूरे द्रव्य को मिथ्या, एक मिथ्या तो पर्याय रूप से देखा है ना। इसलिए ऋजु सूत्र नय में द्रव्य निक्षेप भी संभव है, यहां तक तो हमने कल पढ़ा था, अभी आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार ऋजु सूत्र नय में नाम निक्षेप का भी अभाव नहीं है, ये तो जाहिर है। हमने किसी व्यक्ति का नाम जाना तो वो वर्तमान में उस को हम नाम से जान रहे हैं ना, तो वर्तमान में तो है ही, उसका नाम से हम उसको जान रहे हैं। क्योंकि जिस समय शब्द का ग्रहण होता है उसी समय उसकी निजवाचकता पाई जाती है। जिस समय हमने शब्द सुना सिंह, तो उसी समय वो अपना जो सिंह नाम का जो कोई प्राणी उसको बता रहे हैं ना, तो वर्तमान में वो हमको ज्ञान में आ रहा है कि ये सिंह प्राणी को मैं बता रहा हूँ। वो शब्द क्या कहता है, ये सिंह को प्राणी को मैं बता रहा हूँ, यानी वर्तमान में वो उसका ज्ञान कराता है, इसलिए उसको कहते हैं वाचकता पाई जाती है, यानी शब्द किसी विषय को बताता है। वाचकता यानी क्या, देखो शब्द है शक्कर, ये शब्द है तो शक्कर ये शब्द है वो वाचक है, उसका वाच्य क्या है, वाच्य ने किसको बता रहा है, शक्कर नाम के पदार्थ को, तो शक्कर पदार्थ ये है उसका वाच्य, और शक्कर नाम का शब्द है उसका वाचक, यानी शक्कर नाम के जो अभी हमने साउंड है जो शब्द है उसमें वाचकता है, बताने की शक्ति है। देखो दीपक है उसमें क्या है, प्रकाश है, दूसरों को प्रकाशित करने की शक्ति है, शब्दों में दूसरों को बताने की शक्ति है, इसको कहते हैं वाचकता है, शब्द वाचक है। हम दीपक को प्रकाशक कहते हैं, प्रकाश करता है, तो शब्द कैसे वाचक है, किसको बताते हैं, हाँ अपने को भी और पदार्थ को भी। शक्कर शब्द ने अपने शक्कर ऐसा बताया, अपने को भी बताया और शक्कर नाम के पदार्थ को भी बताया, नहीं समझे। जैसे दीपक है तो दीपक को देखने के लिए हमको दूसरा दीपक जलाना पड़ता है क्या, नहीं जलाना पड़ता, तो वो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं को भी बताता है, और जब दीपक जलाते हैं तो उसके प्रकाश में अन्य वस्तुएं भी दिखती है, अरे दूसरों को भी प्रकाशित करता है, बराबर। जैसे दीपक स्वपर प्रकाशक है, ये हमने ज्ञान ज्ञान पर घटाने बाद में हमको, वैसे शब्द क्या है, स्वपरवाचक है। कोई साउंड आया तो वो साउंड आपको सुनाई दिया ना, तो उसने अपने को भी बताया। जैसे बच्चा रोया तो रोने के आवाज आपने सुनी, तो वो रोने की आवाज भी सुनाई दी, और बच्चे को तकलीफ है ये भी आपको समझ में आया उससे, ख्याल है। इसको कहते हैं वाचकता, शब्दों में है वाचकता, वो पदार्थ को सूचित करता है, वाच्य जो पदार्थ है जिसके बारे में वो बताता है वो उसको कहते हैं वाच्य, और वो जो शब्द हमें बताता है तो शब्दों को हम कहते हैं वाचक, ख्याल है। अभी हमारा ज्ञान कैसा है, जानता है, क्या अकेले दूसरों को ही जानता है कि स्व को भी जानता है। दीपक क्या दूसरों को ही प्रकाशित करता है कि अपने को भी प्रकाशित करता है, वो स्वयं प्रकाशमान है। वैसे ज्ञान तो ज्ञानमय है, और उस ज्ञान में तो अन्य पदार्थ भी जाने जाते हैं, यानी ज्ञान अपने को भी जानता है और पर पदार्थों को भी जानता है। तो यहाँ हम किस विषय से चले गए, हाँ शब्द का ग्रहण है, उसी समय उसकी निजवाचकता पाई जाती है, यानी शब्द उसी समय हमें पदार्थ के बारे में कुछ बताता है।
वह शब्द जो है वह वाचक है, तो उस वाचक में वाचकता है। जैसे वृद्ध में वृद्धत्व है, वृद्धता है, वैसे शब्द में वह जो शब्द जिसको हम वाचक कह रहे हैं उसमें वाचकता है। तो निज वाचकता यानी शब्द अपनी वाचकता को प्रकाशित करता है। क्या लिखा है देखो, उसी समय यानी किस समय शब्द का ग्रहण होता है, उसी समय उसकी यानी शब्द की निज यानी अपनी अपनी वाचकता पाई जाती है।
हाँ, देखो अभी आगे पढ़ेंगे हम। ये तो हमने रुजु सूत्र नय की बात की, यानी कौन से नय में कौन से निक्षेप लग सकते हैं उसकी बात हमारी हो रही। अब तीन रह गए, कौन? शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। अब ये तो शब्द संबंधी नय है ना, तो इन तीनों में शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नय में भी नाम और भाव ये दो निक्षेप होते हैं, क्योंकि ये दो ही निक्षेप वहां पर संभव है, अन्य नहीं। यानी नाम निक्षेप और भाव निक्षेप, एक पहले वाला और एक अंत वाला, बीच वाले कोई उसमें नहीं होते। क्यों नहीं होते उसकी बात अभी यहाँ बता रहे हैं, विशेषार्थ में बताते हैं। शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत ये तीनों ही नए शब्द प्रधान है, यानी जो हम शब्द वहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं वो व्याकरण की दृष्टि से सही है कि नहीं है, वो उस अर्थ को बताने वाला है कि नहीं है, वर्तमान में वो है कि नहीं आदि चर्चा है, यानी वो शब्दों के संबंध में है। तीनों ही शब्द नय के ही भेद हैं, और शब्द किसी न किसी संज्ञा के वाचक होते ही है, और शब्द किसी नाम को बताने वाले होते हैं। कोई भी शब्द आप ले लो तो किसी को बताने वाला है, तो उसमें नाम निक्षेप तो होता ही है। अतः उक्त तीनों नयों में नाम निक्षेप बन जाता है, तथा उक्त तीनों नए वाचक शब्दों के उच्चारण करते ही वर्तमान कालीन पर्याय को भी विषय करते हैं, अतएव उनमें भाव निक्षेप भी बन जाता है। इस तरह से हमने पहले देखा था कि जो द्रव्य निक्षेप है उसमें तो सॉरी द्रव्य द्रव्यार्थिक नय है उसमें सभी निक्षेप बनते हैं। रुजु सूत्र का जो पर्यायार्थिक नय है उसमें स्थापना को छोड़कर अन्य सभी निक्षेप बनते हैं, और आगे वाले जो शब्द नय है, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत तीनों मिलकर भी शब्द नय कहने की पद्धति है। ये जो लास्ट तीन जो है उनमें नाम निक्षेप और अंत का भाव निक्षेप, ये दो निक्षेप लागू होते हैं, संभव होते हैं, दूसरे नहीं होते। हाँ, परंतु यहाँ इनका विषय है शब्द, बस इनका विषय ही शब्द है और वो पर्यायार्थिक नय है। रुजु सूत्र नय में तो वो आ सकते हैं, पर आगे वाले नयों में नहीं। यहाँ वो कौन सा शब्द यूटिलाइज किया है उस पर चर्चा होती है, यानी वो शब्द वो व्याकरण दृष्टि सही है कि नहीं, वो दूसरा कुछ नहीं देखता, वो शब्द की ओर देखेगा, शब्द उसका विषय है, उसका विषय द्रव्य वगैरह नहीं है। वो तो रुजु सूत्र नय ने निश्चित किया है वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य है कि नहीं, वो रुजु सूत्र नय ने देखा। आगे वाले नय है वो शब्द को देख रहे, उसका विषय शब्द है।
देखो यहाँ जो बताया गया है कि शब्द किसी न किसी संज्ञा के वाचक होते हैं, यानी जब शब्द होता है तो वो किसी न किसी को इंडिकेट करता है। अब समझ लीजिए कि आकाश ऐसा हम कहते हैं तो वो आकाश को बताने वाला शब्द है, और फूल कहते हैं तो फूल यानी फ्लावर, लेकिन हम आकाश का फूल कहेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आकाश का फूल हो सकता है क्या? इसलिए क्या कहते हैं, सिर्फ शब्द लेंगे तो वो किसी न किसी को इंडिकेट करेगा, वो किसी न किसी का वाचक होगा, संज्ञा का वाचक, संज्ञा यानी किसी न नाम हो सकता है, ये बताना चाहते हैं। बस वहाँ द्रव्य की और इसकी बात नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पर्याय में जो शब्द पर्याय नए चालू है ना, तो उसमें जो नए चलेंगे वो शब्द की बात चल रही है, शब्द नए की बात चल रही है, अभी उसको वहां से देखना। हाँ आगे
देखो, पर्यायार्थिक नय के दो भेद है, मूल भेद। एक रुजु सूत्र ने और आगे शब्द ने। रुजु सूत्र ने वो वर्तमान पर्याय वाला वो द्रव्य उसको विषय करता है, और आगे आगे जो उसने विषय करके जो शब्द यूटिलाइज किए है, अब इनका विषय वो द्रव्य नहीं, वो जो इसने जिसको एक्सेप्ट किया है, ऐसे जो शब्द है उन शब्दों को ये विषय करता है, शब्दों को जानने वाला है ये, ख्याल है ना। देखो अभी रुजु सूत्र नए ने बताया कि जो ये इंद्र पुरंदर की जो हमने बात की, तो इसने एक्सेप्ट किया इंद्र पुरंदर शक्र ये सभी इंद्रों के नाम है, वो इसने एक्सेप्ट किया। तो ये जो नाम हमने यूटिलाइज किए आगे के नए उस नाम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये नाम ठीक है कि नहीं है, ये शब्द जो है, नाम भी मत कहो उसको, शब्द क्या ये शब्दों में कोई व्याकरण दृष्टिया कोई गलती है क्या, अगर गलती होती है तो वो उसके तीन भेद फिर शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, तो ये व्याकरण दृष्टिया सही शब्दों को ही स्वीकार करेगा। इसने जो शब्द एक्सेप्ट किए हैं उसमें से अभी उन शब्दों के ऊपर इसके डिस्कशन चलेगी, ये नए वाला देखेगा कि वो व्याकरण दृष्टिया शुद्ध है कि नहीं, बीच वाला देखेगा वो उसका अभी जो अर्थ है जिस अर्थ में यूटिलाइज है उसी अर्थ में है कि नहीं, अन्य अन्य अर्थ वाले उससे नहीं चलेंगे, एक साथ पुरंदर शक्र और आप इंद्र नहीं कह सकते, इसने तो उसको एक्सेप्ट किया था, इसने तो एक ही अर्थ वाला शब्द एक्सेप्ट किया, और इसने कहा कि अभी वर्तमान में वो ऐसा कर रहा है क्या, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ये आगे आगे यानी ये तीनों ही नए, उनका विषय शब्द है, द्रव्य को उसने विषय नहीं किया, शब्द को लिया, द्रव्य को हाँ पर्याय को ही, उसको बताने वाले शब्द कैसे है ठीक है कि नहीं, वो आप शब्द कौन सा वहां यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसमें वो शब्दों को प्यूरिफाई करते चला जाता है। ये नयों की चर्चा फिर आने वाली है 80 पेज के बाद, फिर ये दोबारा बिल्कुल डिटेल में आने वाली है। अभी तो 6 अपेक्षाओं से ये मंगल आदि का वर्णन है, पहले हमने धातु देखा, फिर निक्षेप देखा, फिर नय देखा, उसकी अभी चर्चा हो रही है, क्या ले? अब यहाँ अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ ये आपका ही प्रश्न इसी में भी पूछा, देखो पहले आगे की लाइन पढ़ो, शंका क्या है यहाँ पर, नय का निरूपण किस लिए किया गया है? उनको पता था आपको प्रश्न आने वाला है ना, शास्त्र के अभ्यास में नय की क्या जरूरत है, हम इतना माथा क्यों फोड़े उसमें, ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है ना अपने को। देखो समाधान, क्योंकि हमको पदार्थ शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, शास्त्र में किसी चीज का वर्णन है पदार्थ का, कौन से पदार्थ, हम स्वयं आत्म पदार्थ, और हमें उस पदार्थ को जानना है, तो जानना है तो उसके लिए कुछ साधन आवश्यक है कि नहीं, हमें चाय बनानी है तो उसके लिए भी जो कुछ साधन सामग्री आवश्यक है उसको पहले हम इकट्ठा है कि नहीं बराबर करते हैं, फिर हम वी स्टार्ट प्रोसीडिंग, है ना, कोई भी कार्य हमको करना है तो उसके लिए पहले साधन इकट्ठा करते हैं। तो अभी हमारा कार्य क्या है, शास्त्रों ने जिसको बताया उसको जानना है, किसके लिए, शास्त्रों के लिए नहीं, अपने लिए, हमको हमें अपने को ही जानना है, क्योंकि हमारा वर्णन आचार्यों ने करुणा करके यहाँ लिख के रखा है, तो वो जानने के तरीके क्या है तो वहाँ बताएंगे, अभी उसका समाधान यहीं से पढ़ेंगे पहले, फिर देखेंगे।
देखो पहले में पहले हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, कि यहाँ हमें धर्म करना है, तो धर्म की शुरुआत कैसी होगी, कि जब तक हम अपना स्वरूप है जो निज आत्मा है उसका अनुभव नहीं करेंगे, अगर हमें अपने आत्मा का अनुभव करना है तो वो आत्मा क्या है कैसा है वह हमको जानना पड़ेगा, तो वो जानने वाला तो अभी दूसरा हमारे पास कोई साधन नहीं एक्सेप्ट शास्त्र, तो शास्त्र को पढ़ना है, तो वो जिस अभिप्राय से शास्त्र में कथन किया गया है वह अभिप्राय हमें समझना चाहिए, और वह अभिप्राय समझने के लिए निक्षेप नय प्रमाण आदि का ज्ञान होना आवश्यक है, और यही बात अभी आगे आपको बताएंगे इसी में आएगा। ये तो भाई आचार्य तो इतने विचक्षण थे, चाणाक्ष थे, चतुर थे, कि ये पंचम काल के जीवों के मन में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं वो पहले से जानते थे, ये तो सब 1200 वर्ष पहले लिखी हुई बात है, आज की नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि हम ही अभी बहुत होशियार हो गए और हमको ये प्रश्न उठ जाए, पहले के लोग तो मूर्ख थे जो बोले हाँ बाबा वाक्यम प्रमाणम, ऐसा नहीं है साहब, गहरे पानी में जितने जाओ और डूबने में मजा आता है। चलो,
तो हमें कोई भी पदार्थ जानना है तो उसके लिए तीन बातों से जान सकते हैं। कैसे? अभी यहाँ देखो, पढ़ेंगे पहले हम, जो पदार्थ का, हाँ पहले ऊपर का श्लोक रह गया, 10वां नंबर। अच्छा किया, याद दिया। प्रमाण नय निक्षेपैर्यो अर्थम नाभिसमीक्षते युक्तम चायुक्तवत् भाति तस्यायुक्तम च युक्तवत्। क्या कहते हैं ऊपर देखो, प्रमाण नय निक्षेपै ही, प्रमाण नय और निक्षेपों द्वारा, यानी प्रमाण द्वारा, निक्षेप द्वारा और नयों द्वारा, यो यानी जो, अर्थम न अभिसमीक्षते, जो अर्थ को यानी पदार्थ को बराबर नहीं जानता है, उसकी समीक्षा नहीं करता है, वो क्या करता है? युक्तम च अयुक्तवत् भाति, उसको युक्त पदार्थ भी अयुक्त जैसा लगता है। हा? जो योग्य जो है वो अयोग्य जैसा लगता है, और क्या होता है? अयुक्तम च युक्तवत्, और जो अयुक्त है वो योग्य जैसा लगता है। ख्याल है ना, पदार्थ जैसा नहीं है वैसा लगता है और जैसा है वैसा नहीं लगता।
यानी फॉर एग्जाम्पल, आचार्य कहते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, और जिसको पदार्थ का यथार्थ स्वरूप मालूम नहीं है वो कहते हैं निमित्त से कार्य होता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये योग्य अयोग्य, युक्तम अयुक्तम की बात है,
क्योंकि हमने वो उस पर प्रमाण नय निक्षेप से चर्चा नहीं की है। तो सामने पेन है इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसा हमको भासित होता है, ये अयुक्त भासित होता है, युक्त जैसा भासित होता है।
इसके बहुत सारे उदाहरण है, राग से धर्म होता है ये, अरे एक ने हजारों बातें हैं कि जो हम वस्तु स्वरूप को नहीं जानते हैं, जिसको आश्रव परिणाम कहे उसको हम संवर परिणाम मानते हैं। क्यों? राग क्या है? आश्रव है ना, उससे धर्म बंद, कर्म बंद होगा, और उससे हम कर्म की निर्जरा मानते हैं। ये बहुत सारी, मतलब ये अच्छी बात है, देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग है।
देखो कल भाई साहब ने प्रश्न पूछा था ना,
महेंद्र भाई,
कि कुम्हार ही घड़ा बनाता हुआ दिख रहा है और दुनिया वालों को समझाएं तो वो तो मानेंगे नहीं, उनको तो अयुक्त ही युक्त लगता है। निमित्त से कार्य नहीं होता है फिर भी हमें क्या, अभी हम अन्य की बात छोड़िए, हमें क्या लगता था अभी तक जब तक इसमें से नहीं पढ़ा है तब? नहीं, वो निमित्त बिना कैसे कार्य हो सकता है? तो निमित्त क्योंकि सामने दिख रहा है और उससे कार्य होता हुआ हम मान भी रहे, जो अयुक्त है उसी को युक्त मान समझ रहे हम। इसको फिर पढ़ेंगे, देखो, जो यानी जो विचार नहीं करता, कैसा? जो पदार्थ का प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, अभी तीन बातें बताई, किस किस के द्वारा पदार्थ को जानना है, तो प्रमाण द्वारा, वो प्रमाण के भेद बताए प्रत्यक्षादि, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा, फिर नयों द्वारा, अभी नयों के लिए क्या है लिखा, नयगम आदि नयों द्वारा, और निक्षेप कितने, तो नामादि निक्षेपों द्वारा। यानी हमको शॉर्ट करना है कि जो प्रमाणों द्वारा, नयों द्वारा और निक्षेपों द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से विचार नहीं करता, हमें तो ज्ञान है हमारे पास और विचार करने की शक्ति है, तो किसी पदार्थ का निर्णय करना है तो हमें क्या करना है, तो विचार करना है। कैसे? प्रमाण नय और निक्षेप, इनके द्वारा विचार करना है, तो हमको पदार्थ यथावत जैसा है वैसा भासित होगा। उसे पदार्थ का समीक्षण कभी, यानी जो विचार ऐसा नहीं करता, यानी जो प्रमाण निक्षेप और नयों द्वारा पदार्थ संबंधी विचार नहीं करता, उसको पदार्थ का जो समीक्षण है, पदार्थ का जो उसको कुछ ज्ञान हो रहा है, कभी युक्त होते हुए भी अयुक्त सा प्रतीत होता है। युक्त यानी संगत, संगत यानी सही, हाँ, योग्य होते हुए भी अयुक्त यानी असंगत सा प्रतीत होता है, और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त की तरह प्रतीत होता है। यानी ये जो सिद्धांत हम अलग अलग निश्चय व्यवहार के या क्रमबद्ध पर्याय के, निमित्त उपादान के वगैरह जो सिद्धांत सीखे हैं, परंतु उसको तो उल्टा ही प्रतीत होता रहता है, क्योंकि उसने प्रमाण नय और निक्षेपों द्वारा वस्तु यानी पदार्थों संबंधी कभी विचार ही नहीं किया है। पदार्थ है ने छह द्रव्य उन संबंधी भी विचार नहीं किया है और अपने आत्मा संबंधी भी विचार नहीं किया है। यानी वो प्रत्येक पर्याय प्रत्येक पदार्थ कैसा परिणमित होता है, उत्पाद वे ध्रुवत्व उसके अपने कारण होता है कि पर के कारण होता है, ये तो हमने कभी उस पर विचार करने की कोशिश ही नहीं की है। विचार करेगा उसको अवश्य वो जैसा है वैसा प्रतिभासित होगा, परंतु हम विचार करते नहीं ना, क्योंकि हमारे घर में कोई रूढ़ी चलती है तो हम उसी के अनुसार चलते रहते हैं। सुबह मंदिर में जाना चाहिए, भगवान के नमस्कार करना चाहिए, इतनी पूजाएं बोलनी चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो हम वो रूटीन में वो क्रिया करते हैं और शरीर की जो जो अवस्था है वो मेरी है ऐसा मानकर चलते रहते हैं और हमें धर्म क्यों नहीं प्राप्त होता या यही धर्म है ऐसा समझकर चलते हैं और फिर भी आत्मा का स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं आता। ख्याल है आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ देखो, अभी हमने यहाँ प्रमाण के भी कुछ भेद है, नयों के भी भेद है और निक्षेपों के भी भेद है। हमने निक्षेपों के छह भेद देखे, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और फिर नए भी देखे, नैगम आदि नए, नैगम संग्रह व्यवहार ये द्रव्यार्थिक नए, और रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत ये पर्यायार्थिक नए। अब यहाँ प्रमाण के भी भेद दिखाए हैं, क्या लिखा उन्हें, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा। तो अभी तो हम केवल उसके क्या भेद है उसको देखेंगे, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो प्रमाण यानी स्टैंडर्ड सही ज्ञान उसको प्रमाण कहेंगे। तो ये प्रमाण कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण ऐसे दो भेद है। तो हम लौकिक में भी कहते ना मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा था, ऐसे ना उसको भी जिसको लौकिक वाला जो प्रत्यक्ष है उसको यहाँ नाम है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। व्यवहार में यानी लौकिक में जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं यानी क्या इंद्रिय और मनों के द्वारा जिसको हमने डायरेक्ट हम जिसको जानते हैं उसको कहेंगे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ये हमने तो उसको देखा था, वो चोरी कर रहा था, ऐसे ना प्रत्यक्ष देखा, तो इसको कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और दूसरा प्रत्यक्ष उसको कहेंगे पारमार्थिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी आत्म यानी इंद्रिय और मन के अवलंबन बिना आत्म प्रदेशों से डायरेक्ट जानना उसको कहते प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ऐसे कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी आपके पहचान में है? हाँ केवल ज्ञानी, वो तो परिपूर्ण रीति से प्रत्यक्ष ज्ञानी है, सकल प्रत्यक्ष कहते हैं उनको। और जो अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञानी है उनको विकल प्रत्यक्ष कहते हैं। अभी उसके डिटेल में अभी नहीं जानना। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद है। प्रत्यक्ष में एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष जिसको हम लौकिक में इंद्रिय मन के द्वारा जिसको हम सामने देखा है ऐसा हम कहेंगे प्रत्यक्ष देखा है प्रत्यक्ष सुना है वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। और दूसरा प्रत्यक्ष यानी वो जो केवल ज्ञान आदि जो है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अब दूसरा है परोक्ष। तो परोक्ष ज्ञान भी क्या प्रमाण हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो उसमें कौन कौन से भेद है? तो स्मृति यानी मेमोरी, कोई चीज़ पहले हो चुकी है और हमारे याद आती है तो वो स्मृति है। प्रत्यभिज्ञान यानी अभी किसी को देखा, अभी हमने गाय को देखा सफ़ेद गाय, परंतु हमने कल एक काली गाय देखी थी उसको हमको याद आया, अरे वो भी गाय थी ये भी गाय है। तो सामने एक चीज़ देखकर पहले वाले के साथ उसके जोड़ रूप ज्ञान हुआ, वो प्रत्यभिज्ञान हुआ। फिर तर्क कि ऐसा है इसलिए ऐसा होता है या ऐसा होता है, ये जो तर्क लगाते हैं उसको तर्क, वो सही होना चाहिए, कुतर्क नहीं चलेगा। जैसे आप कहते हैं ना गधे को चार पैर है और आदमी को दो है इसलिए आदमी आधा गधा है, ये कुतर्क हुआ, ये सही तर्क नहीं है। तो तर्क और अनुमान, अनुमान यानी अभी हमने देखा है पहले जहां जहां धुआं है वहां अग्नि होता ही है, अग्नि के बिना वहां धुआं नहीं कभी निकल सकता, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। तो हम धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाते हैं, उसको कहते हैं अनुमान ज्ञान। पूरा हाथी अंदर बैठा है तालाब के अंदर, ऊपर सूंड है, तो हमने एक छोटा अवयव देखकर पूरा अनुमान लगाया कि नीचे हाथी होना चाहिए। हाँ उसमें इंद्रिय निमित्त होता है और पहले देखी हुई बात है या पहले किसी को प्रत्यक्ष होती है मन है, परंतु ये क्या है अनुमान आदि उसमें क्या है कि किसी को ये प्रत्यक्ष है, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष कभी देखा है अग्नि और धुआं एक साथ, या अन्य किसी ने देखकर आपको समझाया है। इंद्रिय मन, मन है ना वहाँ, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान सब में मन है, और अंतिम जो परोक्ष में जो सबसे प्रमाण ज्ञान ऐसा है वो है आगम ज्ञान, उसको कहते हैं आगम प्रमाण। ऐसा उसमें क्यों आगम को प्रमाण कहा है, तो वो शब्द रचना, परंतु केवल ज्ञानी ने स्वयं प्रत्यक्ष जानकर, प्रत्यक्ष ज्ञानी है ना, प्रत्यक्ष प्रमाणियों ने, प्रमाण उनका ज्ञान तो प्रमाण है, केवल ज्ञान प्रमाण है, उन्होंने प्रत्यक्ष सभी चीजें जानी है और जानकर बताई है, और जो बताई उसके अनुसार ये शास्त्र की रचना हुई है। इसलिए जो आगम में जो शब्द है, आगम में जो लिखा है वो आगम प्रमाण है। तो मिथ्यात्व अवस्था में मिथ्या ज्ञान है, परंतु जो आगम संबंधी हम जानते हैं वो प्रमाण ज्ञान है, सही ज्ञान है, क्योंकि हमने आगम प्रमाण से वो जाना है। अभी हमको तो पैथोलॉजी संबंधी कुछ मालूम नहीं है, आपके ब्लड में कितने सेल्स है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी शुगर कितनी, कुछ मालूम नहीं, परंतु वो पैथोलॉजिस्ट ने प्रत्यक्ष जांच करके जो जाना उसने हमको रिपोर्ट बताया। वो रिपोर्ट हम घर में ले आए और किसी ने पूछा कितना है, तो हम बोल देते हमारी ब्लड शुगर इतनी है, हमारा हीमोग्लोबिन इतना है। तो वो कैसे जाना, अपने परोक्ष जाना, परंतु किसी ने प्रत्यक्ष जानकर वो लिखा था इसलिए वो हम सही कहते हैं, है ना। वैसे केवल ज्ञानी ने स्वयं प्रत्यक्ष जानकर ये बातें बताई है, और वो तो पूर्ण वितरागी, और जो रचना करने वाले आचार्य गणधर वे भी वितरागी, तीन कषाय का अभाव हुआ है, तो उन्होंने जो रचना की है वो अभी परंपरा से हमारे तक आई है, तो उसको कहते हैं आगम प्रमाण, आगम प्रमाण कहते। तो हमें चीजों को, किसी चीजों को कैसे जानना है, प्रमाण के द्वारा, यानी इसमें आगम प्रमाण आए, ग्रंथों में आती है ना बात, तो प्रमाण द्वारा जानना है, निक्षेपों द्वारा जानना है और नयों द्वारा जानना है। परोक्ष के पांच है, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम, पांच भेद। अगली का हाँ 11 नंबर पढ़कर फिर हम पेज पलटेंगे। आगे आएंगे शायद, ये तो न्यायदीपिका वगैरह में भी आते हैं, सिद्धांत प्रवेश का जो बड़ी है ना उसमें भी है, तत्वार सूत्र में भी है, इसमें तो आने ही वाले सभी विषय, क्योंकि प्रमाण नए निक्षेप से जानना है तो प्रमाण की बात तो करेंगे ही। ये अभी यहाँ तो इंट्रोडक्शन है खाली, एक एक शब्दों से हम परिचित हो रहे हैं, उनका जो डिटेल जो वर्णन है वो आगे आने वाला है। हमें लगता है अकेला करना नहीं, योग नहीं पूरा है, जीव संबंधी जो कुछ है। हाँ ज्ञानं प्रमाणमित्याहु उपायो न्यास उच्यते नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितर्थ परिग्रह। नीचे भी लिखा है, लघी अस्त्र में लिखा है वो, हाँ उसका अर्थ आगे लिखा है देखो। विद्वान लोग सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, ज्ञानम प्रमाणम इति आहु, आहु यानी बताते बोलते कहते, और नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है बराबर। अब निक्षेप की बात है कि नाम रखना या उसमें अलग अलग कुछ हम स्थापना करते हैं या जो कुछ है उसके द्वारा वस्तु में भेद, वस्तु में जो हम भेद करते हैं, वस्तु में जो हम डालते हैं, निक्षेप करते हैं, रखते हैं, उसको हमने क्या कहा था, निक्षेप। तो वस्तु में भेद करने के लिए उपाय को किसके द्वारा किया हमने उपाय, नामादिक के द्वारा, नामादिक यानी वो नाम स्थापना द्रव्य भाव क्षेत्र काल भाव वगैरह सब लेना, उसके द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास कहते हैं। परिपूर्ण वस्तु है तो वो सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान उसको जानता है, उसको प्रमाण कहा। प्रमाण क्या करता है, परिपूर्ण वस्तु को जानता है। निक्षेप क्या करता है? वस्तु में भेद डालता है, और नए क्या करता है? उस एक एक भेद को जानता है। आसान है ना? प्रमाण परिपूर्ण वस्तु को जानता है, निक्षेप उस वस्तु में कुछ भेद डालता है, और नए उस एक एक भेद को, एक एक अंश को जानता है। विद्वान लोग सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। न्यास ये निक्षेप का ही दूसरा नाम है। और ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ये नए तो शब्दात्मक भी हो सकते हैं या अभिप्रायत्मक यानी ज्ञानात्मक भी हो सकते हैं। इस प्रकार युक्ति से अर्थात प्रमाण, नए और निक्षेप के द्वारा पदार्थ का ग्रहण, देख ग्रहण यानी लेना छोड़ना, ये ग्रहण नहीं है। जब जब ग्रहण शब्द आएगा तो उसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान के द्वारा ग्रहण। क्योंकि जीव के पास क्या है? हाथ है कि पैर है ग्रहण करने के लिए? ज्ञान है। तो ज्ञान में ही ग्रहण होता है और ज्ञान में ही छोड़ना होता है। समय सार में बात आती है ना, राग को छोड़ो और अपनी निजात्मा का ग्रहण करो। यानी क्या? राग को जानना छोड़ो और अपने को जानना रखो, उसको कहते हैं ग्रहण और छोड़ना। तो हम राग द्वेष को छोड़ना है, राग द्वेष के छोड़ने के पीछे राग द्वेष की तरफ दिखते रहते हैं तो छूटता ही नहीं है, है ना? कि जिसको छोड़ना है उसकी तरफ से दृष्टि हटाओ, यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। तो राग द्वेष को नहीं जानना है तो क्या करना है? अपने आप को जानते रहो, वीतराग स्वरूप जो अपना स्वभाव है उसको जानते रहो, तो अगली पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। तब हम कहेंगे इसने राग द्वेष को छोड़ा, यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। देखो क्या कहते हैं, इसको युक्ति कहा। प्रमाण, नय और निक्षेप, इन तीनों के द्वारा पदार्थ का निर्णय करना, इसको कहते हैं युक्ति। इस समय सार में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? कुनकुंदाचार्य ने क्या बताया है? उन्होंने, मैं उपदेश दे दूंगा आप जानो कैसे। हाँ 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 हाँ, अभी आप ये आप बताना, अभी याद आया तो। हाँ दर्शाता हूँ। हाँ, मगर वो कैसे करना? तो उसके लिए क्या चार बातें बताई? आगम का उपदेश, परंपरा, गुरुओं का सेवन, युक्ति का अवलंबन, ये युक्ति है, और फिर स्वानुभव, इससे प्रमाण करो ऐसा कहा। ये चार बातें बताई। तो आगम से तो हम जानते हैं, जो शास्त्र का अभ्यास है। अब बताना,
बोलो, बोलो, बोलो।
शास्त्र का अभ्यास है, आगम की जो रचना की आचार्यों ने, वो हम शास्त्र पढ़कर उसको जान रहे हैं, ये आगम है, आगम का उपदेश। परंपरा, गुरुओं का सेवन, सेवन यानी क्या? उनका जाके वैयावृत्ति करना, उनके कुछ
हाथ
पैर दबाना, ऐसी बात नहीं होती। गुरु ने जो उपदेश दिया है उसको सही रूप से उसको जानना, उसका उपदेश ग्रहण करना, ये
उनका सेवन,
गुरु की उपासना है। फिर क्या? तीसरा, युक्ति का अवलंबन। तो कौन सी युक्ति करनी? युक्ति यानी कुछ आइडिया ऐसा करना,
ट्रिक
और
करना,
ये ट्रिक करना, ये बात नहीं है युक्ति। युक्ति में ये प्रमाण, नए, निक्षेप तीनों आ जाते हैं।
यानी प्रमाण, नए और निक्षेप के द्वारा हम किसी भी पदार्थ का चिंतन करते हैं तो यथार्थ निर्णय होने से वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है। और इतना तो ये बाह्य बातें होती हैं, इतना करने के बाद अगर आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो तुम स्वयं के आत्मा का अनुभव करो, और आत्मा का अनुभव करने से ये प्रमाण हो जाएगा। हम जो बातें बता रहे हैं, देखो आचार्यों ने कैसी मतलब बातें बताई हैं हमें, उसका युक्ति का अवलंबन कहते हैं। युक्ति का यानी हम समझते हैं कि कुछ तो भी ऐसी गड़बड़ी करे कि फटाफट अपने हाथ में चीज आ जाए। यहाँ तो युक्ति का अर्थ बहुत क्लियरली बताया।
तो
क्या कहते? युक्ति का अर्थ कहते हैं, देखो सेकंड लाइन, इस प्रकार युक्ति के अर्थात किसके? प्रमाण, नय और निक्षेप के द्वारा पदार्थ का निर्णय करना चाहिए। ग्रहण करना मैंने छोड़ दिया, यानी हमें भी ये अगला पॉइंट ऐसा है, देखो, अतएव नय निरूपण करना आवश्यक है।
अश्विन भाई का प्रश्न था ना, नय क्यों जानना? तो जब हम, देखो आत्मा के अनुभव के पहले आत्मा का सही निर्णय होना बहुत आवश्यक है। तो वो निर्णय कैसा करे, तो हमारे पास कौन सा ऐसा प्रमाण है, तो आगम का प्रमाण हमारे पास अवेलेबल है, गुरुओं का उपदेश हमारे पास है। अब आगम ग्रंथ पढ़कर और गुरुओं का उपदेश सुनकर आगे क्या है, प्रमाण नए और निक्षेपों के द्वारा तत्व निर्णय करना है। आत्मा कैसा है, जैसा है वैसा उसको प्रमाण नए निक्षेपों द्वारा जानना है। जब सही तत्व निर्णय होगा, तो जब निर्णय हो गया आत्मा का, तो अभी क्या करना रहा, बस निर्णय हो गया, वो निर्णय में विकल्प चलेंगे। जब तक निर्णय तक नहीं पहुंचते हैं ना, तब तक विकल्प होते रहेंगे, और निर्णय होते ही बस निर्विकल्प हो गया, क्योंकि अभी तो बस आनंद ही आनंद है, अभी क्या करना है, कुछ करना धरना कुछ नहीं है। ये जो लोग हैं, ये अभी ऐसा ध्यान करना पड़ेगा, उपयोग यहाँ से यहाँ हटाना पड़ेगा, वहां ले जाना, ये कुछ नहीं, वो सहज अपने आप हो जाता है। भाई ये निर्णय महत्व की बात है। प्रमाण नए और निक्षेपों के द्वारा आत्मा का सही निर्णय हो जावे, और अपनी आत्मा की महानता तो हो ही जाएगी, भाषित हो ही जाएगी, तो उपयोग जब पर की महिमा रहती है, पर की रुचि रहती है, तो उपयोग बार बार उसकी तरफ दौड़ता है, और अपने महानता भाषित हो गई, अपनी बिल्कुल यथावत जैसा है वैसा निर्णय हो गया, तो निर्णय होते ही आत्मा का अनुभव हो जाएगा। विकल्प की जरूरत क्या है यदि निर्णय, हाँ हाँ उसका अर्थ ही है, उसका अर्थ ही अभी कुछ कुछ नहीं नहीं कुछ, हाँ अभी निर्णय नहीं हुआ,
यानी निर्णय करने में विकल्प तो होंगे ही होंगे,
यानी जिसको निर्णय हो गया है उसको भी विकल्प आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरा निर्विकल्प हुआ, अभी कोई समय दृष्टि है, उसके निर्णय तो हो चुका है, तो क्या उसके आत्मा संबंधी विकल्प नहीं आएंगे, तो उसके शुभ भाव में है तो उसके विकल्पात्मक भूमिका में उस विकल्प चलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि उसको निर्णय नहीं हुआ इसलिए विकल्प आ रहे हैं। अंतर में स्थिरता नहीं, वो तो है ही है,
देखिए
ऐसा रूल नहीं कह सकते आप, क्योंकि सम्यक दृष्टि की विकल्पात्मक भूमिका है कि नहीं है, समझाने वाली है, वो समझो चिंतन में बैठा है, तो उसके भी चिंतनात्मक जो है वो उसके विकल्प ही है, वो नॉट नेसेसरी कि उसके निर्णय नहीं हुआ इसलिए नहीं आ रहे, फिर भी उसके संबंधी उसको सहज रूप से ऐसे समझाने के, समझने के, या बार बार उस पर विचार करने के भाव आते हैं और स्थिरता हो जाती है, तो वे भी विकल्प छूट जाते हैं। विकल्प की भूमिका यानी उसकी शुभ रागात्मक भूमिका है,
नहीं वो तो सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, आप सम्यक दृष्टि की कर रहे हैं, वो ऐसा समझा रहे हैं कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव होगा, ऐसा ही कहना है ना आपको, तो उसका जब तक निर्णय नहीं हो रहा है उसके विकल्प चल रहे हैं, और विकल्प जो चलेंगे किसके, अन्य गांव के नहीं, ये तो स्व संबंधी जो विकल्प चल रहे हैं, तो ये नक्की हो गया कि नहीं यही मैं हूँ, ऐसा ही मेरा स्वभाव है, स्वरूप है, ऐसा वो निर्णयात्मक आ गया, मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसा निर्णय उसका पक्का हो गया, तो उसी समय उसको आत्मा का अनुभव होगा। अभी कर्म की अपेक्षा से देखो तो उसके करण लब्धि चालू है, अध प्रवृत्त करण, अपूर्व करण आदि जो है, तो उसमें भी वह विकल्पात्मक ही भूमिका है,
यानी कहीं ऐसी मान्यता अंदर पड़ी है बहुतों की, देखी थी नहीं, ये विकल्प करते करते ही प्राप्त होने वाला है, तो विकल्प उठाओ उठाओ उठाओ, तो और विकल्प करता है, तो ये तो सेंटर में चीज है और वो घूमता रहता है बाजू में, तो कब पहुंचेगा अपने गंतव्य पर, ये है यहाँ, और उसकी इस तरह से वो दौड़ना चल रहा है, विकल्प यानी इस तरह से दौड़ रहा है, तो पहले ये तो मान्यता में तो ये नक्की करना है कि विकल्प से आत्मानुभव नहीं होने वाला, यानी वो जानबूझकर कोशिश पूर्वक प्रयत्न पूर्वक मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा, अरे अभी जान लिया ना बस करना, ख्याल है ना, वो हो जाएगा, यानी वो अपने आप समझाने के लिए भी शब्दों में उसको रखना कोई बात नहीं है, पर हाँ तब तो निर्णय नहीं है, या निर्णय है फिर भी अपनी महानता ऐसी नहीं है कि जिसको अन्य सबको छोड़कर, लक्ष्य छोड़कर अपने आप को ग्रहण करे, देखो इसलिए नए का निरूपण करना आवश्यक है, ये बात आई ना, अश्वमेध ख्याल आया ना, नए नए की क्यों जानना है। अब आगे चलते हैं, अब आगे नामादि निक्षेपों का कथन करते हैं। अभी निक्षेपों की बात वो बताएंगे, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप आदि वो समझाएंगे। यहाँ मंगल शब्द से चालू किया था तो मंगल शब्द पर वो घटित करेंगे निक्षेप। उनमें से अभी ये मंगल शब्द पर निक्षेप है तो पहला निक्षेप कौन सा है? नाम निक्षेप, यानी नाम मंगल कहेंगे, यानी मंगल ऐसा नाम रखना, वो हो गया नाम मंगल। तो ये नाम रखेंगे तो नाम कैसे कैसे रखा जाता है, किसी निमित्त की अपेक्षा वहाँ है कि नहीं है, निमित्त से नाम रखते तो कैसे नाम हो सकते हैं, और बिना कोई अन्य निमित्त से भी हम नाम तो हमारे चॉइस का कुछ भी रखते सकते हैं, है ना। हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसका कौन सा नाम रखना, तो पहले होता था ना वो फाल्गुन मास में जन्मे तो उसके फाल्गुन ही नाम रख दिया, तो ये नॉट नेसेसरी। हम अपने चॉइस के कोई भी कमला विमला कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो कमल नाम रखा तो क्या कमल जैसे होना चाहिए उसको, ऐसी कोई बात नहीं। सरस्वती नाम रखा तो बहुत बुद्धिमान होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम अपने चॉइस का कोई भी नाम रख सकते हैं, है? तो यहाँ क्या लिखते हैं, अन्य निमित्तों की अपेक्षा रहित यानी बिना किसी निमित्त के किसी की मंगल ऐसी संज्ञा रख करने को नाम मंगल कहते हैं। हमारी एक बहन का नाम मंगल है तो उसको क्या ऐसी कोई आवश्यकता है कि उसमें इतने गुण होंगे तो हम उसको मंगल कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बराबर। तो ऐसे कौन कौन से निमित्तों की अपेक्षा से भी क्या नाम रखे जाते हैं, क्या उसकी चर्चा यहाँ की है। तो अन्य निमित्तों की अपेक्षा रहित किसी की मंगल ऐसी संज्ञा करने को, संज्ञा यानी नाम, किसी का नाम रखने को नाम मंगल कहते हैं। अब ये निमित्तों की अपेक्षा जो नाम पढ़ते हैं उसकी चर्चा यहाँ की है। क्या बताना था? नाम मंगल बताना था कि किसी की भी नाम मंगल ऐसे कह देना उसको, ये नाम मंगल हुआ। तो कभी कभी निमित्तों की अपेक्षा से भी नाम पड़ जाते हैं, कैसे उसको अभी बता रहे। तो वहां निमित्त चार प्रकार का, यानी नाम पढ़ने के चार प्रकार के निमित्त बताए जाते हैं। उसमें पहले है जाति, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है गुण और चौथे ही क्रिया। इन चार निमित्तों से नाम पढ़ सकते हैं किसी पदार्थ के, कैसे? तो उन चार निमित्तों में से तद्भव और सादृश्य लक्षण वाले सामान्य को, यानी तद्भव सामान्य को और सादृश्य सामान्य को जाति कहते हैं। नहीं समझे? इस विश्व में द्रव्य कितने हैं? अनंत। और आप कहते छह, तो जब हम छह कहते उसके पहले एक शब्द लगाते हैं, जाति अपेक्षा, कि द्रव्यों की जाति है ना अलग अलग, एक जीव जाति है, एक पुद्गल जाति है, एक धर्म एक अधर्म है, अनेक है वहां जाति आता है। अनेक जहां है पदार्थ है या जीव है या कोई भी वस्तुएं हैं, उनकी एक जाति यानी एक सदृश जो होते हैं उसको जाति कहते हैं। हमने नाम कर्मों में एक भेद देखा है, एक जाति नाम कर्म वाला, याद है? हाँ, कौन सी जाति है? एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति, त्रिंद्रीय जाति, चतुर्थ जाति, पंचेंद्रीय जाति। तो जाति हुई, यानी क्या उसमें ऐसा कोई सामान्य है? क्या सामान्य है? कि एक इंद्रिय उनका ज्ञान का इतना उगाड़ है और उनकी इतनी इंद्रियों की वहां प्राप्ति है, उस अपेक्षा उन सबको हम इकट्ठा एकेंद्रीय जाति कहते हैं। ये सामान्य लक्षण हुआ उनका, उसको कहते हैं सादृश्य लक्षण। सादृश्य यानी सदृशता है, सभी में कोई कॉमन है तो उसको सादृश्य कहते हैं। ये जो सादृश्य है ये अनेक जीवों में हो सकता है, जैसे हम मनुष्य कहते हैं तो मनुष्यपना, अमेरिकन हो, इंडियन हो, जापानीज हो, सब में मनुष्यपना तो समान है, तो उसको हम सादृश्य लक्षण कहेंगे। सब में मनुष्य यानी मानवता जो है, मानवपना, मनुष्यपना जो है वो सब में कॉमन है, अनेक जीवों में कॉमन है, उसको हम सादृश्य कहेंगे। अब हमारे ऊपर ही घटित करता है एक जीव के ऊपर, कि जन्म से उसके मरण तक वो मनुष्य ही है, भले वो बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, उसमें मनुष्यपना कायम है ना, तो वो तद्भव सामान्य हुआ। एक ही जीव अलग अलग समयों में उसमें जो सदृशता दिखती है वो जाति कौन सी, उसकी मनुष्य जाति, कब से जन्म से मरण तक उसकी मनुष्य जाति है, एक ही जीव पर घटाया, उसको तद्भव सामान्य कहेंगे। और अनेक मनुष्यों के ऊपर घटाए सभी मनुष्य है तो उनमें सादृश्य सामान्य कहेंगे। क्या लगता है, इसी को आगे बताया, फिर इसको पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। थोड़ा भेद है उसमें। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये सामान्य की अपेक्षा यानी सदृशता की सिमिलैरिटी की अपेक्षा बता रहे हैं, यहाँ सत्ता की अपेक्षा नहीं बता रहे। उन सब में कौन सा एक कॉमन गुण है उसकी अपेक्षा से, अभी मनुष्यपना हमने देखे उसकी अपेक्षा से, जैसे वृक्षत्व की बात करेंगे, अभी यहाँ आम है, दूसरे दूसरे अलग नीम है, कोई हाँ वड़ है, बबूल है, सभी कैसे वृक्ष है, तो वृक्षत्व उनके सादृश्य है, सब में मिलकर वृक्षत्व कॉमन है। अब एक ही वृक्ष पर घटाएंगे, पहले बीज था, फिर अंकुर हुआ, फिर पौधा हुआ, फिर छोटा छोटा झाड़ हुआ, फिर बड़ा पेड़ वृक्ष हो गया, तो सब में वृक्षत्व है ना, कायम है वृक्षत्व, वृक्षत्व हर स्टेज पर उसका वृक्षत्व कायम है, तो उसको हम तद्भव सामान्य कहेंगे। यानी अनेक कालों तक वो सामान्यपना चला रहता है, और सादृश्य सामान्य में एक ही समय में अनेक जीवों में समानता है। अब यहाँ पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। देखो विशेषार्थ करते इसी का, किसी एक द्रव्य की त्रिकाल गोचर अनेक पर्यायों में, अनेक भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की कुछ पर्याय, अनेक पर्यायों में रहने वाले अन्वय को, अन्वय ने वही का वही पना जो है उसको अन्वय कहते हैं, तद्भव सामान्य या ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं, ऊर्ध्वता कहते हैं, काल की अपेक्षा जो है अनेक समयों में वो जो सामान्यपना उसका चलता रहता है उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहा। जैसे अभी हमें मनुष्य की बात की, अब देव की बात करेंगे, अनेक सागरों की उसकी आयु है, तो उतने सागरों तक वो देव 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 उसकी देव ही पर्याय चल रही है ना बहुत समयों तक, तो उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहेंगे, वही का वही पना। देवपना मिटकर मनुष्य हो गया वो जीव, तो अभी उसका मनुष्यपने का सामान्यपना चालू हो गया, अभी वो देव नहीं रहा। जब तक देव पर्याय में है तब तक उसका वो ऊर्ध्वता सामान्य रूप लक्षण चालू है। जैसे मनुष्य की बालक युवा और वृद्धावस्था में मनुष्यत्व सामान्य का अन्वय पाया जाता है, यानी वो मनुष्यपना कंटिन्यूएशन में चल रहा है, बालक अवस्था से वृद्धावस्था तक मरण तक उसका मनुष्यपना का अन्वय, यानी वही का वही, वही का वही, वही का वही, यानी मनुष्यपना 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 उसका कायम है अनेक समयों में, उसको कहते हैं ऊर्ध्वता सामान्य। उसी का दूसरा नाम है तद्भव सामान्य। तथा एक ही समय में यानी एट एनी गिवन टाइम नाना व्यक्तिगत सदृश परिणाम को, यानी अनेक व्यक्तियों में जो सादृश्य सिमिलैरिटी दिखती है, जैसे हम सभी भारतवासी है तो सभी हम मनुष्य हैं, उसमें कोई राजस्थानी गुजराती मराठी ऐसे होते हुए भी अपना अपना अलग भिन्न अस्तित्व रखते हुए भी सब में हम भारतीय की अपेक्षा देखेंगे तो सिमिलैरिटी है, या मनुष्यत्व की कहो तो ये जो सदृशता है उसको यहाँ क्या कहा, सादृश्य सामान्य या तिर्यक सामान्य। यानी तिर्यक सामान्य अनेक जीवों में घटित होगा और ऊर्ध्वता सामान्य एक ही जीव में अनेक कालों में घटित होगा। ख्याल आया ये बात, जैसे रंग आकार आदि से भिन्न भिन्न प्रकार की गायों में गोत्व सामान्य का अन्वय पाया जाता है। हम देखिए ना, गाय अलग अलग का, कोई लाल है, कोई सफेद है, काली है, कोई वो बहुत अलग अलग कलर वाली होती है, तो सब में ये डिफरेंस होते हुए भी गायपना की अपेक्षा सब में समानता है, गोत्व सामान्य की अपेक्षा अन्वय पाया जाता है। तो ये जाति का नाम, जाति की अपेक्षा से नाम हो सकता है, हम कहेंगे ये मनुष्य है तो ये क्या हुआ, ये जाति अपेक्षा उसका नाम पड़ गया, ये गाय है ये जाति की अपेक्षा उसका नाम है। अभी हमारे घर में कोई गाय है तो हम उसको कोई भी उसका नाम रखते हैं, जैसे कुत्ते का नाम, कोई मोती रखेगा, कोई क्या क्या नाम रखेगा, जाति अपेक्षा उसका नाम क्या कहेंगे, कुत्ता। और अपना फेवरेट उसका कोई नाम हम अपने घर के बच्चे के नाम रखते हैं, वैसे कुत्ते का भी नाम रखेंगे। वो हो गया, वो नाम स्थापना, ये नाम निक्षेप होगा। नाम निक्षेप में कोई जाति वगैरह की अपेक्षा नहीं रहती है, यानी कुत्ते को कुत्ता कहना है, कुत्ते जाति के सभी प्राणियों को कुत्ता कहना, ये तो जाति अपेक्षा नाम पड़ा। उसको कोई हम नाम रख देंगे तो नाम निक्षेप हो जाएगा। अब नाम रखने के लिए दूसरा कौन सा निमित्त हो सकता है, द्रव्य का, ये सेकंड पॉइंट है द्रव्य वाला। अब द्रव्य के निमित्त से नाम कैसे पड़ते हैं, तो कोई अपने संयोग में कोई द्रव्य होता है उसको संयोग द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के दो भेद है, पहले हमने क्या देखा, जाति की अपेक्षा नाम हो सकता है किसी का, जैसे नाम है कुत्ता तो कुत्ता जाति की अपेक्षा कुत्ता का, और उसी को हमने टॉम कुछ रख दिया नाम, तो वो नाम निक्षेप होगा, वहाँ कोई जाति की अपेक्षा नहीं है। अब दूसरा जो पॉइंट है, और नाम कैसे हो सकता है, तो द्रव्य की अपेक्षा। द्रव्य ने क्या, उसके भी दो भेद, एक संयोग द्रव्य और एक समवाय द्रव्य। उनमें अलग अलग सत्ता रखने वाले द्रव्यों के मेल से यानी मिलाप से, संयोग से जो पैदा हो उसे संयोग द्रव्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई लाठी वाला या टोपी वाला, तो लाठी अलग द्रव्य है और जिसने उसको पकड़ा है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वो लाठी वाला जा रहे हैं ना उसको जरा बुला, ये केले वाला जा रहा है ना उसको बुला, केले वाला ठीक है। यानी ये निक्षेपों की, नामों की चर्चा तो अपने दिन भर के इसमें प्रयोग होता ही रहता है। यानी वो क्या हुआ, द्रव्य के संयोग से हमने उसका नाम रख दिया, ये संयोग द्रव्य हो जाएगा। जो द्रव्य में समवेत हो अर्थात कथनचित तादात में रखता हो उसे समवाय द्रव्य कहते हैं। अभी कोई लंगड़ा है, पाए उसका अधू है, तो उसको हम लंगड़ा कह के बुलाते हैं, वो लंगड़ा है ना, तो वो क्या हुआ उसका, वो उसके शरीर में ही उसके अंगभूत ही है, वो दूसरा कोई उसके अटैच नहीं है। केले वाला में केला भिन्न था और वो व्यक्ति भिन्न था, अब उस व्यक्ति में ही वो उसका अधूपना जो है वो समाहित है। तो हमने क्या किया, उसको क्या कहा, लंगड़ा कहा, या कोई आँखहीन होगा उसको अंधा कहा, तो वो क्या हुआ, वो समवाय द्रव्य से उसका नाम पड़ गया, ख्याल है, हाँ मोटी कहना उसको, ए मोटी कहना, हाँ हाँ वो तो हाँ शरीर से मोटी, और बड़ी बहन वो तो बड़ी है नहीं, वो तो हाँ वो अलग चीज है, वहाँ तो दो में कंपैरिजन हुई है, ये वो भी नहीं होगा, वो तो हाँ वो तो अलग चीज है, हाँ ये हो गया, हाँ समवाय द्रव्य के कारण उसका नाम हो गया। जो पर्याय आदि की अपेक्षा परस्पर विरुद्ध हो, अभी तीसरा पॉइंट बता रहे, द्रव्य की अपेक्षा नाम देखे, पहले जाति की अपेक्षा देखे, अब गुण की अपेक्षा नाम देखेंगे। ये गुण यानी वो द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण नहीं है, तो व्यक्ति में कोई विशेषता देखते हैं और फिर उसका ये बहुत होशियार है ऐसा कहते हैं, किसी को क्रोधी है कहना, तो क्या कहते हैं कि जो पर्याय आदि की अपेक्षा परस्पर विरुद्ध हो अथवा अविरुद्ध हो उसे गुण कहते हैं। और इसके उदाहरण अगले के पैराग्राफ में दिए, और परिस्पंद अर्थात हलन चलन रूप अवस्था को क्रिया कहते हैं, इन दोनों के और ये सबके उदाहरण अभी अगले पैराग्राफ में देखते हैं। देखो उन चार प्रकार के निमित्तों में से हमने चार निमित्त देखे, एक जाति, एक द्रव्य, एक गुण और क्रिया। इन चार निमित्तों में से गौ, मनुष्य, घट, पट, स्तंभ, वेत इत्यादि जाति निमित्तक नाम है, वो जाति को बताने वाले, जैसे एक इंद्रिय द्विंद्रिय क्या है, जाति अपेक्षा से नाम है। क्योंकि गौ मनुष्य आदि संज्ञाएं गौ मनुष्य आदि जाति में उत्पन्न होने से प्रचलित है। अभी हम अपने को जैन कहलाते हैं, वो क्या होगा, जाति अपेक्षा नाम, और सरनेम जैन होगा तो ये नाम निक्षेप होगा। वो भी रखे नहीं, चलता आ रहा है। दंडी छत्री मौली इत्यादि संयोग द्रव्य निमित्त नाम है। अभी ये संस्कृत क्या है? दंडी यानी दंड को रखने वाला, वो दंडी। छत्री को, छत्री यानी वो मुकुटधारी कहते हैं, वो छत्री, राजा छत्री यानी कोई उसके ऊपर छत्र पकड़ता है तो वो छत्री। और मौली यानी मुकुट को धारण करता है, मौली। आपने मौली शब्द सुना है कभी? याद है बक्ता हमारा मुकुट, प्रणत मौली मणि प्रभाणा। मौली यानी मुकुटधारी राजा वहाँ नमस्कार करते हैं तो मुकुट के मणि उसकी प्रभा उनके नखों में चमकती है, इसे कहे ये मौली यानी मुकुटधारी। क्योंकि दंडा छत्री मुकुट इत्यादि स्वतंत्र सत्ता सत्ता वाले पदार्थ है और उनके संयोग से दंडी छत्री मौली इत्यादि नाम व्यवहार में आते हैं। अब आगे, अब समवाय द्रव्य निमित्त, जैसे हमने अंधा और लोक ये देखा था ना लंगड़ा, तो गलगंड काना कुबड़ा इत्यादि समवाय द्रव्य निमित्तक नाम है। क्योंकि जिसके लिए गलगंड इस नाम का उपयोग किया गया है उसके गले का गंड भिन्न सत्ता वाला नहीं है। वो तो गले में ऐसा आता ना, वो तो थायराइड वगैरह ऐसे गड़ू या ऐसा बड़ा ऐसा कुछ हो जाता है, यहाँ इधर होता है, किसी को पीछे होता है, तो उसको गलगंड कहते हैं। यानी कोई भी उसकी जो शरीर में व्याधि है, उपाधि है, जो कुछ है उसके कारण उसको वैसे कह देना। कुबड़ा, कुबड़ा यानी वो हंच बैक वाला। इसी प्रकार काना कुबड़ा आदि नाम समझ लेना चाहिए। कृष्ण रुधिर इत्यादि गुण निमित्तक नाम है। ऐसे भ्रमर कैसा है तो हम उसको काला कहेंगे ना, एक्चुअली उस नाम से ही बुलाना उसको। काले कोई होगा तो उसे ये कालू कहे ना। हाँ क्योंकि कृष्ण आदि गुणों के निमित्त से उन गुण वाले द्रव्यों में ये नाम व्यवहार में आते हैं। तो खून को रुधिर, वो लाल होता है ना, खून तो लाल होता है, तो उसको रुधिर कह देना। रुधिर नाम से उसको पुकारते हैं। रक्त ये क्या है? रक्त ये वर्ण का नाम है और वो खून को हम रक्त कहते हैं। ये क्या हुआ? समवाय द्रव्य निमित्तक नाम आ गया यहाँ। ये सॉरी, गुण निमित्तक नाम, गुण निमित्तक। लाल देखा ना उसको, गुण लाल उसका गुण है। गुण यानी यहाँ पर्याय की बात चल रही है। हाँ? देखो, पर्याय आदि की अपेक्षा परस्पर विरुद्ध हो अथवा अविरुद्ध हो उसे गुण कहते हैं। कृष्ण रुधिर, वो परिभाषा मुझे भी बराबर नहीं समझी। या हाँ, यह ऐसा नहीं, बहुत चाणा है, बहुत चाणा है। स्याना कहते थे ना, जो बुद्धू है उसको स्याना कह देते हैं, वैसे हो सकता है। देखेंगे, कहीं आगे आएगा तो देखेंगे। अभी क्रिया निमित्तक बात रहेगी। क्रिया निमित्त कुछ क्रिया करने वाला, तो जैसे गायक, उसका नाम कैसे बड़ा गाय, ये गायक है, ये नर्तक है, तो गायक नर्तक इत्यादि क्रिया निमित्तक नाम है। क्योंकि गाना नाचना आदि क्रियाओं के निमित्त से गायक नर्तक आदि नाम व्यवहार में आते हैं। अभी डॉक्टर कहना, ये क्या है? वो उसके नाम हो गए ना, पेशे के कारण, व्यवसाय के कारण, वो ये क्रिया के कारण। जैसे बहुत नाम, अब जो ग्राहक है या कोई जो व्यापारी है, ये सब नाम उसी के कारण पड़ते हैं। इस तरह जाति आदि उन चार निमित्तों को छोड़कर संज्ञा की प्रवृत्ति में अन्य कोई निमित्त नहीं है। यानी इन निमित्तों से जो नाम पड़ते वो तो अलग है, जब अभी हमने देखा था कि व्यापारी है या ग्राहक है या कुछ भी, जो अभी हमने इतनी सारी चर्चा की, इन नामों को छोड़कर हम व्यक्ति के कुछ नाम रख सकते हैं। जब हम किसी को व्यापारी कहते हैं तो उसका वो क्रिया निमित्तक नाम हुआ, पर उसका अपना कुछ नाम है कि नहीं वहाँ? तो उसका वो नाम है, वो नाम निक्षेप का नाम होगा, कोई भी नाम उसका हो सकता है। वो उसके धंधे से, उसके क्रिया से, उसके गुणों से, उसके जाति से कोई संबंध नहीं रखने वाला, ऐसा कोई भी उसका इन चारों ही निमित्तों के बिना जो कुछ नाम रख सकते हैं उसको, वो उसका नाम निक्षेप है। तो यहाँ हमने मंगल नाम बोला, मंगल नाम रखा, तो ये नाम मंगल हो गया। बोलना वाच्यार्थ, वाच्यार्थ है ना, शब्दार्थ की अपेक्षा रहित मंगल शब्द नाम मंगल है। यानी मंगल का क्या अर्थ होता है, इस अपेक्षा से रहित किसी का मंगल नाम रखना, ये नाम मंगल है। मैंने कोई भी चित्र यहाँ लिखा और उसका ये मंगल है ऐसा कहा, या कोई पार्टी बता दी इसको हम मंगल, कुछ भी कह सकते हैं ना, हाँ प्रॉपर नाम उसका। तो शब्दार्थ की अपेक्षा वहां नहीं रहती, तो शब्दार्थ की अपेक्षा रहित मंगल शब्द नाम मंगल है। उस मंगल का आधार 8 प्रकार का है। अब ये मंगल कहाँ कहाँ हो सकता है उसकी बात करें, उसका आधार, मंगल का आधार कौन कौन है। तो जैसे एक जीव, अब ये कॉम्बिनेशंस बताएं, जीव और अजीव में ये कॉम्बिनेशंस है। पहला है एक जीव, दूसरा है अनेक जीव, तीसरा बताएंगे एक अजीव, चौथा बताएंगे एक अनेक अजीव। अब इनके कॉम्बिनेशन, पांचवा है एक जीव और एक अजीव, यानी पहले का और तीसरे का कॉम्बिनेशन लिया। छठा है अनेक जीव और एक अजीव, दूसरे और तीसरे का कॉम्बिनेशन लिया। फिर एक जीव और अनेक अजीव, ये पहले और चौथे का कॉम्बिनेशन लिया, और अनेक जीव और अनेक अजीव, ये दूसरे और चौथे का कॉम्बिनेशन लिया। बराबर। अभी इसके कैसे घटित करते हैं उसको देखेंगे। विशेषार्थ, मंगल के लिए आधार या आश्रय 8 प्रकार का होता है, जिसका खुलासा इस प्रकार समझना चाहिए। साक्षात एक जिनेन्द्र देव के आश्रय से जो मंगल किया जाता है, उसे एक जीवाश्रित मंगल कहते हैं। ये किसके आश्रय से ये मंगल किया है उसकी बात चल रही। यहाँ जिनेन्द्र देव के स्थान पर एक जिनयति भी लिया जा सकता है। जिनयति यानी मुनि, भावलिंगी मुनि की बात है। अनेक यतियों के आश्रय से जो मंगल किया जाता है, उसे अनेक जीवाश्रित मंगल कहते हैं। सभी जीव है ना, अनेक मुनि लिए। तीसरा भी एक अजीव लेना है, तो एक जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के आश्रय से जो मंगल किया जाता है, उसे एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। जहाँ जहाँ अजीव की बात आई, तो वहाँ प्रतिमा लेना जिनेन्द्र भगवान की। जहाँ जहाँ जीव की बात है, वहाँ या स्वयं जिनेन्द्र भगवान या मुनि। चौथा पॉइंट, अनेक जिन प्रतिमाओं के आश्रय से जो मंगल किया जाता है, उसे अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। अब कॉम्बिनेशंस ले लेंगे। एक जिनेन्द्र देव और एक ही उनकी प्रतिमा के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है, उसे एक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। अब अनेक अनेक को ले, अनेक यति और एक जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है, उसे अनेक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। आगे सातवां पॉइंट, एक जिनेन्द्र देव और अनेक जिन प्रतिमाओं के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है, उसे एक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। एक जिनेन्द्र भगवान और अनेक प्रतिमा लिए। अब अनेक जीव और अनेक अजीव ले लेंगे। अनेक यति और अनेक जिन प्रतिमाओं के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है, उसे अनेक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ये तो नाम मंगल की बात यहाँ समाप्त हुई। कल ये स्थापना मंगल की बात करेंगे आगे। हाँ, यहाँ तक आए ना हम, 20 पेज पर आए हैं। ये कॉम्बिनेशन तो उसमें तो क्या पढ़कर ही समझ, ज्यादा समझने जैसी कोई बात है ही नहीं है। तो इससे आगे हम बढ़ेंगे भी, स्थापना मंगल वगैरह वगैरह बातें। जावाणी।